नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। वित्तीय प्रौद्योगिकी मंच फोनपे ने शुक्रवार को कहा कि उसने 12 अरब डॉलर के निवेश या वित्त पोषण से पहले के मूल्यांकन पर वॉलमार्ट से अतिरिक्त 20 करोड़ डॉलर की प्राथमिक पूंजी जुटाई है। पिछले वर्ष अपना मुख्यालय भारत स्थानांतरित करने के बाद से फोनपे 1 अरब डॉलर तक की पूंजी जुटाने की कवायद कर रही है। ये नया वित्त पोषण भी उसी का हिस्सा है। फोनपे ने एक बयान में कहा कि इस वित्त पोषण के साथ कंपनी विभिन्न वैश्विक निवेशकों से 65 करोड़ डॉलर जुटा चुकी है। निवेश या वित्त पोषण से पहले का 12 अरब डॉलर का मूल्यांकन वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फोनपे को देश की सबसे मूल्यवान वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी बनाता है। बयान में कहा गया, कंपनी को और निवेश मिलने की उम्मीद है जिनके बारे में घोषणा आने वाले समय में की जाएगी। कंपनी के संस्थापक और सीईओ समीर निगम ने कहा कि हमारे बहुलांश निवेशक वॉलमार्ट का हम आभार जताते हैं जिसने हमारी दीर्घकालिक आकांक्षाओं का लगातार समर्थन किया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय श्रीनगर में प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान मंच का उपयोग कर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए शुक्रवार से 2 दिन की क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये कार्यशाला उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा 5 क्षेत्रों दक्षिण, उत्तर, पश्चिम, मध्य और उत्तर पूर्वी में आयोजित की जा रही कार्यशालाओं की 5 श्रृंखलाओं का हिस्सा है। इसमें कहा गया है कि विभिन्न क्षेत्रों में से ये कार्यशालाएं परियोजना नियोजन में पीएम गतिशक्ति को व्यापक रूप से अपनाया जाना सुनिश्चित करेंगी। इसमें कहा गया कि ये कवायद पीएम गतिशक्ति NMP के सभी हितधारकों को विचार विमर्श के लिए एक साथ लाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों विभागों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होगा। इस क्षेत्रीय कार्यशाला में सड़क, रेलवे, दूरसंचार, बिजली, नौवहन, नवीकरणीय ऊर्जा और नागर विमानन समेत विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल होंगे। स्टरलाइट पावर को राजस्थान में एक हरित ऊर्जा पारेषण परियोजना मिली है। कंपनी ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। बयान में कहा गया कि उसे ये परियोजना शुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए मिली। उसे PFC कंसल्टिंग लिमिटेड की ओर से इस परियोजना के निर्माण के लिए बूट के आधार पर 35 वर्ष की अवधि के लिए एक आशय पत्र मिला है। इसमें राजस्थान के फतेहगढ़, बादला और रामगढ़ क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों से ऊर्जा निकाली जाएगी। सरकार की देश में मूल्य वर्धित इस्पात के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष इस्पात के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का दूसरा संस्करण शुरू करने की योजना है। केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में MOU पर हस्ताक्षर कार्यक्रम के दौरान ये जानकारी दी। इस कार्यक्रम में 6,322 करोड़ रुपए की योजना के तहत निवेश के लिए चुनी गई कंपनियों ने हिस्सा लिया। सिंधिया ने विशेष इस्पात के लिए PLI के पहले संस्करण के भागीदारों से कहा, इस्पात उद्योग के इतिहास और भविष्य में आज एक महत्वपूर्ण दिन है। PLI 1.0 पूर्ण विराम नहीं है, ये यात्रा की शुरुआत है। हमारा मंत्रालय पहले से ही PLI 2.0 पर विचार कर रहा है। मंत्री ने आगे उद्योग के हितधारकों से अपने सुझाव और प्रतिक्रिया साझा करने के लिए भी कहा, ताकि विशेष इस्पात के लिए अगली PLI योजना जल्द से जल्द तैयार की जा सके। क्रेडिट स्विस में आए संकट से भारतीय बैंकिंग तंत्र पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि देश में इसकी उपस्थिति बहुत कम है, विशेषज्ञों ने ये दावा किया है। जेफरीज इंडिया की रिपोर्ट में हालांकि कहा गया है कि सिलिकॉन वैली बैंक की तुलना में क्रेडिट स्विस भारतीय वित्तीय तंत्र के लिए ज्यादा प्रासंगिक है। रिपोर्ट के अनुसार स्विट्जरलैंड के बैंक की परिसंपत्तियां 20,000 करोड़ रुपए से कम है। ये बैंक डेरिवेटिव बाजार में मौजूद है और इनकी संपत्ति का 60% कर्ज है, जिसमें से 96% 2 महीने तक के लिए है। इसकी संपत्तियों में हिस्सेदारी 0.1% ही है, जो बैंकिंग क्षेत्रों के लिहाज से काफी कम है। क्रेडिट स्विस का मुख्यालय ज्यूरिख में है और भारत में इसकी सिर्फ एक शाखा है। सूत्रों ने बताया कि इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक कुछ बैंकों के बंद होने से बदल रहे हालातों पर लगातार नजर बनाए हुए है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय श्रीनगर में प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान मंच का उपयोग कर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए शुक्रवार से 2 दिन की क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये कार्यशाला उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा 5 क्षेत्रों दक्षिण, उत्तर, पश्चिम, मध्य और उत्तर पूर्वी में आयोजित की जा रही कार्यशालाओं की 5 श्रृंखलाओं का हिस्सा है। इसमें कहा गया है कि विभिन्न क्षेत्रों में से ये कार्यशालाएं परियोजना नियोजन में पीएम गति शक्ति को व्यापक रूप से अपनाया जाना सुनिश्चित करेंगी। इसमें कहा गया कि ये कवायद पीएम गति शक्ति NMP के सभी हितधारकों को विचार विमर्श के लिए एक साथ लाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों विभागों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र व दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा परिवर्तित दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड को 2017 के मध्यस्थता फैसले के तहत बकाए का भुगतान करने में गारंटी या ऋण बढ़ाने के DMRS के अनुरोध पर ध्यान दे। उच्च न्यायालय ने कहा कि ये निर्णय केंद्रीय आवासीय व शहरी मामलों के मंत्रालय व दिल्ली सरकार को 2 सप्ताह के अंदर लेना है और अगर फैसला दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन के अनुरूप होता है तो वह 1 महीने के अंदर पूरी देय राशि ब्याज समेत जमा करेगा। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।